चलिए अब हम पांचवें पारे के आगाज़ से बुक में से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ बुक को फॉलो करें और इंशाअल्लाह ताला आज जिस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा शरह सदर होगा इंशाअल्लाह वो है खयानत। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से हर किस्म की खयानतों को निकाल दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली रब्बि यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। दीन और दुनिया कुरान पाक की रोशनी में इसमें से आज हम करेंगे पारा नंबर 5 वल मुख्सनात मिनन निसा। इस पारे को हम जिस मौजू से लेंगे वो है खयानत। हम सब उर्दू में इस लफ्ज़ को जानते हैं लेकिन इस बारे में हम इसकी अमली सूरतें देखेंगे और तकरीबन 15 से 20 मुख्तलिफ किस्म की खयानतें देखेंगे। आपका काम क्या होगा कि आपने हर एक किस्म को नोट करना, बाद में एक एक के ऊपर अपनी अमली ज़िंदगी में से नुकात ढूंढने हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में अनजाने में कहीं खयानत तो नहीं है। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूंगी और आप ख़ुद से पूछेंगे तो आप कहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कोई खयानत नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें नहीं पता चलता लेकिन वो हमारे अंदर होती हैं, तो बस ज़रा सा उसका एहसास दिला दिया जाए तो फिर वो काम अल्लाह के हुक्म से सही हो जाता है। क्योंकि जिस्म के अंदर कुछ बीमारियाँ छुपी होती हैं अपने वक्त पे निकलती हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ये मेरे जिस्म में थी मुझे तो पता ही नहीं चला, कभी पहले पता लगता ना तो मैं इसका इलाज कराती। तो आज का सबक इंशाल्लाह एक टेस्ट करवाने वाला सबक होगा, डायग्नोस होगी और उसके बाद इलाज तो बहुत आसान है। आपको तो अगर डॉक्टर पैसे दवाई के नहीं देते तशखीस के देते हैं, वरना तो हर बंदा ही डॉक्टर की बजाय डिस्पेंसर से जाकर दवाइयाँ ले ले, दवाइयों का तो उसको पता होता है। तो डॉक्टर का काम यह है कि ये चेक करे कि मरीज़ को बीमारी क्या है। तो ये कुरान अल हकीम भी है, शिफा भी है, ये आपकी मेरी बीमारियाँ खोल खोल कर दिखाती है। सूरत निसा की आयत 24 से पांचवा पारा शुरू होता है वल मुख्सनात मिनन निसा, कि कैसे अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया कि शादीशुदा औरतों पर तुमने नज़र रखी तो ये तुम्हारी निगाहों की खयानत होगी। क्योंकि हर वो औरत जो किसी के भी निकाह में है वो दुनिया के हर मर्द के लिए हराम है, इसलिए उसके बारे में सोचना, बात करना या उससे अफेयर चलाना तो ये कबीरा गुनाह होगा। फिर आयत 25 में वो लड़कियां जो वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करती हैं असल में इनके निकाह खयानत की नज़र हो जाते हैं। क्योंकि बुखारी में रिवायत है कि ला निकाह इल्ला बी वलीयुन, निकाह होता ही नहीं वली के बग़ैर। तो कोर्ट मैरिज की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, घर से भाग जाना और फिर निकाह कर लेना इसकी भी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। आयत 29 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ईमान वालों बातिल तरीक़ों से दूसरों के माल खाकर खयानत ना करो। इसी आयत में खयानत की एक और किस्म खुदकुशी का तذکرہ हुआ है। खुदकुशी करना अल्लाह के दिए हुए जिस्म में खयानत है। और आयत 31:31 में कबायर का तذکرہ है और खयानत कबीरा गुनाहों में से है। आप नोट कर सकते हैं, गौर भी नहीं किया होगा इन चीज़ों पे कि अच्छा अपनी जान लेना ये तो खयानत है, क्योंकि जान हमारी थोड़ी है, ये तो अल्लाह की थी तो हमने ले ली तो खयानत हो गई। फिर इसी तरह कबीरा गुनाहों में डिटेल से आप देखेंगे ना तो खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। फिर आयत 32 में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जो फ़ज़ल दूसरों पर हो चुका इसको देकर हसद क्यों करते हो, खयानत क्यों करते हो, अल्लाह ताला से इसका फ़ज़ल मांग लो। और अगला जुमला हाईलाइट कर लीजिए, जो किसी को दे सकता है तो वो तुमको भी दे सकता है। अगर ये असूल ज़िंदगी में रहे ना हमारे सामने तो हम कभी ना जलें कुड़े और दूसरों को देकर हसद और रकाबत का शिकार तो बिल्कुल भी ना हो। फिर आयत 33 में विरासत से हकदारों को महरूम करना खयानत की एक किस्म है। आज है ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला इसके ऊपर बेलम काम करने की हमें तौफीक दे। फिर आयत 84 में दो तरह की खयानत का तذکرہ, एक मर्दों की तरफ से जब वो माशी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते और अल्लाह ताला ने जो इनको बड़ाई का मुकाम दिया होता है वो इसको नहीं लेते। शोहर नाम के तो होते हैं लेकिन असल में वो फ़राइज़ पूरे नहीं करते। सोचिए ज़रा, वो मर्द जो हड हराम है, घर बैठे रहेंगे और बेचारी औरतें घरों में बर्तन धोती, सफाइयाँ करती, और बाज़ दफ़ा फिर घर जाकर उनकी मार भी खाती हैं। कभी शराबी हैं तो भंगी हैं तो चरसी हैं। इसके अलावा भी हर वो मर्द जो हाथ तोड़कर बैठ जाए और सिर्फ हालात का शिकवा ही करे, तो ये उसकी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को ना पूरा करना होगा। इसी तरह फिर ख्वातीन भी हैं, साथ ही साथ इसमें औरतों की भी कुछ सिफात हैं जिनमें कमी करके वो खावंदों के हकूक़ में ख़यानत की मुर्तकिब होंगी। बीवी को फिर सालेहा, कानेता, फरमाबरदार, आजिज़ होना होगा, टेक केयरिंग होनी होगी औरत को। तो औरत भी अपने अंदर अगर कोई कमी करती है तो वो भी हकूक़ में ख़यानत होगी। इस आयत में तीसरी चीज़ ख़यानत के मतलब यह है कि बीवी को बीच के रास्तों से हटाकर बराह रास्त उस पर हाथ उठा लेना, यानी ज़रा सा मर्द को गुस्सा आया, पकड़ के बीवी को मारना शुरू कर दिया, तो ये मर्द की ख़यानत है। इतना हक़ नहीं दिया अल्लाह ने उसको, असल में इसके हकूक़ के मामले में ख़यानत है। बाज़ लोग अपने हक़ से ज़्यादा वसूल करने के आदी होते हैं, तो ये उसी की एक किस्म है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। फिर इसी तरह आयत 35 में अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के झगड़े की सूरत में मुकर्रर किए जाने वाले शख्स के बारे में बताया कि आज अगर किसी की गलत तरफदारी कर दी, कसूर शौहर का था और बीवी को झूठा कह दिया और कहा माफ़ी मांगो। अक्सर हमारे माशरे में यही किया जाता है, बस बस चुप चुप, औरतें नहीं बोलती, लड़कियां नहीं बोलती, बेटियां नहीं बोलती, बस माफ़ी मांगो। अब एक जिसने पहले ज्यादती की थी उसको आप सबके सामने और बड़ा बना रहे हैं, और बीवी जो सच्ची थी उसको छोटा बना रहे हैं। कल तो वो और नखरे करेगा, कहेगा तुझे वो सबके सामने माफ़ी नहीं मांगी थी। यानी उसके अंदर और एक अकड़ और ऐसी कैफियत आ जाएगी। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले देखा जाए कि कसूर है किसका। तो ऐसे लोग जो हैं, जो राजाती तरफदारियां लोगों की करवाते करते हैं, वो भी ख्यानत के मुर्तकिब हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ ये बात कर दी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की निगाहों में खाइन बनकर आओगे। आप देखिए कि लोगों की नज़रों में हम सच्चे हो जाएं, लेकिन अल्लाह की नज़रों में खाइन हो तो हम कहाँ रहेंगे। अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। फिर आयत 36 में अल्लाह ताला ने खालिक के साथ ख़यानत से रोका कि अल्लाह के साथ ख़यानत क्या है? शिर्क, रियाकारी, दिखावा, करते किसी और के लिए और कहते ये हैं कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। फिर आयत 38 में रियाकार को एक खाइन की सूरत में पेश किया गया। आयत 40 यानी 40 में ये बता दिया कि तुम छोटी से छोटी नेकी भी करोगे तो क़यामत के दिन इसमें ख़यानत नहीं करूँगा, चाहे वो तुम्हें नज़र आए या ना आए। फिर क़यामत के दिन मैं छोटी छोटी नेकियाँ भी दिखा दूँगा। आयत 41 में अल्लाह के नबी को ये बता दिया गया कि वो दिन कैसा होगा, जब आपसे शहादत हक़ की गवाही के बारे में पूछा जाएगा। तो इस आयत में हम देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी हक पहुंचाकर इसमें ख़यानत करने से खुद को भी रोका और उम्मत को भी रोका। क्या पता चला? खुलासा क्या है कि नबी की बजाय कुछ और लोगों की तरफ बात को पलटाते हैं। अल्लाह के नबी से भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा, और आपने सीरत में भी वो बात पढ़ी होगी कि हज्जतुल विदा के मौके पे आप किस तरीके से अजुर्दा थे और लोगों से गवाही तलब कर रहे थे कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया। और उसके बाद आपकी आंखें गीली थी, नम आंखें थी आपकी। याद रखिए, बहुत बड़ा एहसास होता है कि मैंने अपनी नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिशें कर ली हैं। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इसको लेंगे, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला फिर आपके लिए उस काम को आसान कर देगा। हमने चूंकि कभी ये चीज़ें बचपन से देखी ना सुनी, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज है हमारे पास, रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाज रोज़े करने के बाद जो शख्सियत पैदा होती है वो शख्सियत नहीं है। क्योंकि हर चीज़ का एक फैक्ट होता है ना, खाना खाते हैं तो फिर वो ताकत कहाँ लगेगी, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल कहाँ जाएगा। बस नमाज रोज़े के बाद नेकियां करना, भाग भाग के काम करना, ये है रूह। नमाज से ईमान का पेट्रोल मिला, इस पेट्रोल को इस्तेमाल कीजिए, फ़फ़िरु इलल्लाह, और इसी तरह से फ़स्तबिकुल खैरात। अब जो लोग नेकियां नहीं करते, बस नमाज रोज़े ही करते रहते हैं, तो वो ऐसे ही है कि जैसे गाड़ी को फिल अप कराया और अपने घर के गैराज में उसको चला दिया, तो गाड़ियाँ तो गर्म होंगी, इसलिए फिर बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इबादत का ज़ोम भी होने लगता है। अल्लाह ताला हम सब की इसलाह फरमाए। तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र के लिए हमें तैयार कर दे। फिर इसके बाद आयत 60 में ईमान का दावा करना और अमली तौर पर तागूत की तरफ अपने मामलात को लेकर जाना, ये भी खयानत है। यानी आपकी अमली ज़िंदगी इस बात का सबूत दे रही है कि आप ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। फिर आयत 64 में आमद रसूल का मकसद क्या है? आज तो लोगों ने शेरों में और नातों में कुछ और ही बनाया ना, लेकिन नोट कीजिए कि रसूल की आमद का मकसद इतात, अल्लाह की खुद भी इतात की और बंदों को भी सिखाया। मगर वो लोग जो जश्न आमद रसूल के मौके पर कुछ काम करके अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, असल में वो खाइन हैं। आयत 72 यानी 72 में अल्लाह ताला ने किरदार की बात पेश की है। दिल चाहता नहीं, सुस्तियां करता फिरता है, उठता कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में आने के लिए और बहाने कर देता है कि मुझे बड़ी मजबूरी है। ऐसी सारी सुस्तियां जो दीन के रास्ते में बहानों की वजह से होती हैं, वो सारी खयानतें हैं। हाईलाइट करें, पूछिए अपने आप से, कहीं मैं भी बहाने तो नहीं करती रहती? आप देखिए, सबसे ज़्यादा लोग मजबूर और बेचारे कब दिखते हैं? जब उनको कोई दीन की जिम्मेदारी मिल जाए, कोई दावत मिल जाए, कोई लायबिलिटी, और अगर उसमें कोई पैसा लगना हो तो चीखें निकल जाएंगी। अपने नाम पे हज़ारों खिलाते हैं, हज़ारों लगाते, लौटाते, खिलाते, पिलाते, अपनी ज़ात पे, अपने कपड़ों पे, अपने नाम पे, अपनी शोहरत पे, और जब ज़रा सा किसी जगह दीन के नाम पे अपने ही लिए कोई चीज़ लेनी पड़ जाए तो मुश्किल लगने लगती है। तो याद रखिए, ये बहाने जो है ना, ये भी खयानते हैं, इसको भी नोट कर लें। फिर आयत 85 में बुरी सिफारिश को खयानत कहा गया। आयत 86 यानी 86 में मुसलमान ममलिकत की खारजा पॉलिसी बयान की गई कि मुसलमान मुल्क वालों के ताल्लुकात दूसरों से कैसे हों। यानी खाइन पर एतमाद नहीं करना, यानी जिससे धोखादही का डर हो उससे ज़रा से मुख्तात रहिए। दीन ने क्या कुछ नहीं सिखा दिया, अल्लाह हमें इससे फ़ायदा लेने वाला बनाए। फिर आयत 105 से 115 में एक बहुत तफसील से वाक़या रखा जिसकी बुनियाद पर ख़यानत करने वालों को ख़यानत से रोका गया और नबी सल्लम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। और बहुत ही सख्त आयतें हैं असल में, कि बिरादरी और ख़ानदान का नाम लेकर लोगों ने एक शख्स की झूठी हिमायत की और अल्लाह के नबी के सामने झूठे सच्चे दावे कर दिया कर। आप चूंकि इंसान थे, आपको जब तक अल्लाह ना बताता, आपको गैब ना पता चलता, तो इन आयात में अल्लाह ने नबी को बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी खयानतों पे मुत्तले कर दिया। हमारे लिए भी अमल यह कि सिर्फ़ ज़ात बिरादरी के नाम पे या ख़ानदान के नाम पे किसी की हिमायत नहीं करनी चाहिए जबकि वो डिज़र्व ना करता हो। फिर आयत 117 में मुअन्निसों यानी फ़ीमेल्स की पूजा करने वालों का तذکرہ है कि अल्लाह की ज़ात के साथ ख़यानत करते हो, इसको छोड़कर शैतान को पूजते हो। है ना बात करने की? देखिए, अल्लाह को छोड़कर तो किसी को भी नहीं पूजना, और पूजा भी तो किसको? मुअन्निसों को, फ़ीमेल्स को, जो वैसे ही कमज़ोरी की अलामत समझी जाती हैं। इसको छोड़कर शैतान को पूजते हो, क्योंकि असल में हर बुत के पीछे शैतान होता है। इसी तरह आयत 129 में अल्लाह ताला मर्दों को हुक्म देते हैं और फिर आयत 138 से लेकर पारे के आखिर तक मुनाफिक को एक खाइन की सूरत में पेश किया जाता है। यानी ख़यानत करता है ना मुनाफिक, सच्चा दीन उसके अंदर नहीं होता। फिर आयत 43 में नमाजों में ख़यानत से रोका गया, ऐसा ना हो कि तुम ऐसी नमाजें पढ़ रहे हो कि तुम्हें खुद भी समझ ना आ रहा हो कि तुम क्या बोल रहे हो। ज़रा अपनी पिछली ही नमाज को सोच लें जो अब आके बैठने से पहले पढ़ी। पता है क्या पढ़ा? पता है क्या मांगा? क्या मतलब है इहदिना सिरातल मुस्तकीम का? क्या मतलब है तहियातु लिल्लाही का? तो याद रखिए, नमाज का तर्जमा कम अज़ कम याद होना चाहिए, अगर तफसीलात नहीं भी समझने का मौका आपके पास तो। फिर आयत 44 में अहले किताब की खयानतों का तذکرہ है कि जिनको किताब हिदायत के लिए मिली थी लेकिन वो इसके बरक्स खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराही की तरफ ले गए। अल्लाह हमें ऐसी खयानतों से बचाए। दीन के नाम पे भटकना सबसे बुरा भटकना है। फिर आयत 45 में तहरीफ یعنی کتاب کے معنی کو بدل دینے کو بدترین خیانت کہا گیا، جو کل یہود نے کی اور آج مسلمان قرآن کی آیت کا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ اس سے بچنے کی دعوت ہے۔ آیت 46 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہود کی خیانتوں کا تذکرہ ہے۔ دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے۔ آیت 47 میں اصحاب سبت کی خیانت کا تذکرہ ہے، جن کو بندر بنا دیا گیا، یعنی اللہ کے حکم سے خیانت کی۔ ذرا سا خود سے پوچھئے، کہیں ہم بھی تاویلات تو نہیں کرتے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ موڑ کے تو نہیں پیش کرتے؟ آیت 48 میں جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر خیانت کبیرہ کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے باوجود تم دوسروں کو پوجتے ہو۔ اور آیت 54 میں حاسد کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا، کہ وہ حسد کر کے اللہ کے فضل کو دوسروں سے روکنا چاہتا ہے۔ آیت 58 یعنی 58 وہ آیت ہے جو بنیادی طور پر امانت کے مفہوم کو واضح کرتی ہے، یعنی جس میں کھل کے پھر امانت کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اینڈ پہ بات کریں گے امانت کے بارے میں۔ پھر آیت 105 سے 115 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف داریاں نہ کریں، یعنی سائٹ نہ لیں آپ ان کی۔ پھر آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام دینی رہنماؤں کو خائن کہا ہے، جو اختلافات کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹائے جانے میں خیانت کرتا ہے، یعنی اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی بات کو سچا ثابت کر دے گا لیکن صحیح حدیث کا انکار کر دے گا۔ تو یہ تو خلاصہ تھا آیتوں کے ناطے سے۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے اس بارے کو اس موضوع سے سوچا تھا؟ کیونکہ ہم تو بس قرآن پڑھنا برائے پڑھنا اور ختم برائے ختم کرتے ہیں، لیکن قرآن ایک سمندر ہے، ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں سے جتنا پانی نکالتے جائیں گے اتنا میٹھا پانی نیچے سے نکلتا آئے گا۔ تو وقت دیجئے، محنت کیجئے، بہت کر لیا دنیا کو، دے دیا بہت کچھ، وہ ساتھ ساتھ چلے گی، لیکن اب اپنی زندگی کی پرائیورٹی، سب سے بڑا ہم اور غم، اس قرآن کو سیکھنے کو بنائیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے قرآن کے ایک ایک لفظ کو سیکھنے والا بنا دے۔ اب اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل انہیں آیات کی دیکھیں تو پارے کا آغاز ہے والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں اور نکاح شدہ عورتیں، جو کہ پچھلی آیت سے اگر جوڑیں آپ، یعنی اس پارے کی پہلی آیت کو اگر پچھلے پارے کی آخری آیت سے ملا لیں تو یہاں محرمات کا تذکرہ ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لسٹ میں اللہ نے ہر شادی شدہ عورت کو بھی شامل کیا۔ یہاں اگر ہم اس پر بات کریں کہ زنا یعنی عورت اور مرد کا ناجائز تعلق ویسے ہی بہت برا ہے، لیکن اس کی قباحت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ کسی شادی شدہ عورت اور مرد کے بیچ میں ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں آپ ذرا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی ساری ضروریات کی تکمیل کر دی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسے جنسی جذبات نہیں ہوتے، اس لیے کہا کہ اس موضوع کو نہ چھیڑو، کیونکہ جو ہی بلوغت کی عمر میں یہ معاملات آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکم دے دیا کہ جب کوئی اس عمر کو پہنچ جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو ان کے نکاح کر دو۔ ہر وہ عورت جو کسی کے نکاح میں آ چکی ہو وہ اپنے آپ کو قلعہ بند محسوس کرے گی۔ اگر اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں کوئی دوسرا آ گیا تو اس نے اپنے شوہر کی خیانت کی۔ تو شادی شدہ بچیوں کا فرض کیا ہے؟ کہ ہر طرح کے حالات میں کمپرومائز کریں، اور اگر پہلے کہیں کوئی خواہش اور تمنا تھی بھی تو اس کو بھول جائیں، ورنہ وہ شوہر کے حق میں خیانت ہوگی۔ اس کے بعد اب آیت 25 میں نکاح کے بنیادی ارکان بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اب بتایا جا رہا ہے کن سے نکاح کر سکتے ہو اور کن شرائط اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو آئیے ذرا شادی کے احکام کو شروع سے آخر تک دہرا لیتے ہیں، جو کہ اسلام کی نظر میں ہمیں بتائے گئے۔ اسلام نے عورت اور مرد کی کچھ حدیں رکھی ہیں۔ عورت عورت ہے اور مرد مرد۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت مرد بنے، بچپن ہی سے اس فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ ملحوظ کیا؟ یعنی اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس لیے بیٹیوں اور بیٹوں کی تربیت اور ان کی پرورش میں بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ خاص طور پر لڑکوں میں جو خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ بہادری، جمع مردی، شجاعت اور مجاہدانہ سوچ ہے۔ इनको एक मज़बूत ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत का आदी बनाया जाए। यहाँ मैं बेटों की माँओं को भी ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करूँगी कि बेटों को मज़बूत बनाएं। आज लड़कों को नज़ाकतों के साथ पाला जा रहा है, ऐसे भी लड़के कल बाद में जिम्मेदारियाँ उस तरह निभा नहीं पाते और शौहर बीवी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स लड़कियों की परवरिश में जहाँ नज़ाकत का ख्याल रखा जाए, वहाँ खूबसूरती से इनके अंदर सब्र, इताअत और शुक्र की खूबियाँ भी पैदा की जाएँ। इसी तरह जब निकाह होता है तो सबसे पहले दोनों की रज़ामंदी ली जाएगी। अल्लाह के नबी के पास जब एक मर्द आया और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया, क्या तुमने इस लड़की को देख लिया है? कहा, नहीं। आपने फरमाया, देख लेते, ये चीज़ बाद में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होने का ज़रिया बनेगी। तो हुक्म क्या है कि अगर मुस्लिम माशरे को जहन में रखें तो ये बातें समझ में आती हैं। एक दूसरे का रहन सहन भी दोनों ख़ानदानों का देख लिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ज़ाहरी शक्ल सूरत भी देखनी चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत बेजोड़ रिश्ते होते हैं जो ठीक नहीं। जब सारी चीज़ें देख लेते हैं तो फिर लड़के और लड़की को मौका देना चाहिए। अब यहाँ हाईलाइट कीजिएगा कि वो दूसरे लोगों की मौजूदगी में, अकेले में नहीं, होटल में जाकर चाय की टेबल पे नहीं, साथ दूसरे हैं, महज़ब तरीका है, डिसेंसी है, वहाँ बैठकर बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त पसंद और नापसंद पूछी जा सकती है। एक बड़ी संजीदा महफिल में ये बातें की जा सकती हैं, जहन खुल जाता है इसके बाद। और इसके बाद फिर यह कि अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए इस्तखारे के बाद लड़का भी कह सकता है कि मुझे पसंद है, और लड़की कहे कि मुझे नहीं पसंद, तो फिर रिश्ता नहीं होगा। दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। कभी भी मजबूरी के रिश्ते ना कीजिए, ना करवाइए, बाद में बदमजगियाँ होंगी। बेहतर है कि पहले से जहन साजी की जाए। जब सारे मामलात हो जाते हैं, दोनों ने कहा कि हमें मंजूर है, बस अब इसके बाद इस्लाम ने जो लफ्ज़ बोला है उसको खितबा कहते हैं, यानी मंगनी। इससे मुराद लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं, ये एक अहद होता है। जैसे आप देखिए, खुतबा है ना, जुमे का खुतबा, निकाह का खुतबा, उसी से लफ्ज़ खितबा है, मांग लेना। ये अहद होता है दोनों लोगों के दरमियान। अगर अपने फ़ायदे के लिए आपने मंगनी तोड़ दी तो ये खयानत होगी। मंगनी हो चुकी, इसमें ताखीर ना करें। अगर कोई मजबूरी नहीं लेकिन जज्बात पर काबू पाते हुए मंगनी लंबे अरसे तक रखी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। फी ज़माना वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन के वेज इतने तेज़ हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। और जब ख़ास तौर पे पता लग जाए कि इधर शादी होनी है तो सोचिए ज़रा, शैतान फिर कैसे बहकाएगा नहीं। इसके बाद फिर शादी की शरायत क्या है कि हक महर का तذکرہ होगा, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होगा। वो बच्चियाँ जब अपने वली की इजाज़त के बगैर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, इस्लाम इसको जिना कहता है। अगर बाप नहीं है तो भाई, और अगर भाई नहीं तो इसके रिश्तेदार जो सरपरस्त हों, इनसे इजाज़त लें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ख़ानदान जो एक इदारा है इसको इस्लाम के मुताबिक चलने वाला बना दे, क्योंकि जिस माशरे में ख़ानदान का निज़ाम ही इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा, कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ फिर हुकूमतें पूरी की पूरी इस्लामी होंगी। यानी हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज करो, तो क्या हम अपने घरों में कर चुके, ख़ानदानों में कर चुके, शादियों ब्याहों में कर चुके? उसी को सामने रख लीजिए। फिर इस आयत 26 से अगली चंद आयात में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बंदों से कर रहे हैं कि ये तो सोचो कि अल्लाह जो पाबंदियाँ लगा रहा है तो इसको तुमसे प्यार है, इसको तुम्हारे जज्बात की कदर है। ये ना सोचो कि अल्लाह ताला तो बस पाबंदियाँ ही लगाते हैं और इसको तुम्हारे जज्बात की कदर ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो पाबंदियाँ तुम पर आज लग रही हैं, कल तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में माँ बाप ने पाबंदियाँ लगाईं और बड़े होकर हमने उसके फ़ायदे देख लिए। आज अब देखिए, अहले मगरब ने जहाँ भी ख़ता खाई वहाँ वजह क्या बनी, कि अल्लाह के कानून और उसके हुक्मों को ना मान सके। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। फिर आए तो 29 से 30 में अल्लाह ताला ने हमें दूसरों के माल बातिल तरीक़ों से खाने से रोका। हम सब अपना मुहासबा करें। पूरे कुरान पाक में कई ऐसे तरीके हमारे सामने आएंगे जहाँ लोगों के माल बातिल तरीक़ों से खाए जाते हैं। इसको आप सूद कह लें, रिश्वत कह लें, चोरी कह लें, डाका कह लें, लेकिन इनको मुख्तसर अल्फाज में समेट लें तो किसी का माल इस तरह हासिल कर लेना जिसको वो नापसंद करे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ज़बरदस्ती की दावतें भी हो सकते हैं। किसी किसी ने एक उंगली पकड़ाई, आपने उसका बाजू ही पकड़ लिया। किसी ने आपको घर की चाबी दे दी कि ज़रूरत पड़े तो कुछ खा लेना, और आप कहते हैं पकड़ कर दूसरों को भी दे दो, और दूसरे दिन का माल भी अपने पास अपने आप रख कर ले जाओ, तो ये जायज़ नहीं है। जहाँ किसी का माल उसकी पसंद के बगैर इस्तेमाल किया जाए वो नाजायज़ है। फिर इस एक असूल पे हम हर बात को परखें तो बात बहुत वाज़े है। फिर आयत 31 में कबायर की बात हुई। बाज़ लोग पूछते हैं कौन सा गुनाह कबीरा है, कौन सा सगीरा है। बहुत सारी तफसीरें और तफसीलात आपको इसकी मिल जाएंगी। बिल्कुल मिल जाएंगी, लेकिन आपको सिर्फ़ एक बात यहाँ याद रखनी है, और वो क्या कि हर गुनाह कबीरा है, क्योंकि वो अल्लाह अकबर की नाफरमानी है। कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता, जिसकी बात नहीं मानते ना उसका मुकाम बड़ा आला होता है। इस मिसाल से समझ सकते हैं कि माँ बच्चे से कहे एक गिलास पानी दो और वो ना दे, और बाद में कहे क्या हुआ, पानी ही तो मांगा था आपने, मैंने नहीं दिया। कोई बड़ी चीज़ मांगी होती तो बात भी थी, तो माँ क्या कहेगी कि नहीं, बात पानी की नहीं है, मेरी है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने पानी नहीं दिया मुझे तो बाकी बड़ी चीज़ कहाँ दोगे। बस इसी से समझ लें, हम जब गुनाहों को इतने प्यार से और ख़ुशी से करते हैं तो अल्लाह सुबहाना ताला को कैसे लगता होगा। इतना छोटा होकर मुझे इतने बड़े की नाफरमानी करता है। और फिर अगली आयत यानी 32 में अल्लाह ताला खुश रहने का असूल दे रहे हैं कि तकदीर पर राज़ी रहो। इसको हाईलाइट करें, इस पर राज़ी हो जाएं, आप कभी किसी से उलझेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। इस दुनिया में हर काम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला इसी के मुताबिक लोगों को सलाहियतें देते हैं। इन आयत में हम चूँकि घर के निज़ाम को देख रहे हैं, तो औरत को अल्लाह ताला ने कुछ और ख़ूबियाँ दी, मर्द को कुछ और दी, तो फरमाए इसके मुताबिक काम करो। इसी तरह आप किसी तंजीम में यानी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, चाहे छोटी हो या बड़ी, वहाँ भी यही असूल चलेंगे। हर बंदे की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं, यानी अगर एक बंदे को आप अच्छा काम करते देखते हैं तो आप कहते हैं बस यही है असल काम, आपको करना आए या ना आए आप कहें मैं भी यही करूँगी, तो ये खूबी की बात नहीं है। आप अपनी खूबियों को पहचानें, अल्लाह ने जो आपको दिया है आप इसको काम में लगाएं, किसी दूसरे की नेमतों पर भी हसद ना करें। आप अपनी खूबी में नाम पैदा करें, अगर किसी के दिल में अल्लाह का तकवा होगा तो ये काम आसान होगा, और अगर सिर्फ अपनी ज़ात की बड़ाई होगी ना तो हमेशा लड़ते रहेंगे कि मैं क्यों करूं। नेकी के कामों में भी ये तकाबुल आता है। बस आप किसी को अच्छा लिखता देखते हैं आप जलने लग जाते हैं, हाय मुझे क्यों नहीं आता, मैं भी लिखूं। किसी को अच्छा बोलता देखें तो घबराते हैं, हालांकि अगर आपको अच्छे तरीके से चादर बिछानी आती है वो बिछा दें, अगर नीयत अच्छी होगी ना तो सब का अजर बराबर हो जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। यहाँ एक असूल बना लें ज़िंदगी का कि हर वो नेकी जो मैं कर सकती हूँ मैंने इससे पीछे नहीं हटना, हर वो काम जो मैं कर सकती हूँ मैंने इससे पीछे नहीं हटना। मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने पहले किया था या नहीं। जब कभी किसी काम से पीछे रहूं तो मैं सोचूं कि मैं कर सकती थी ये काम के नहीं, अगर कर सकती थी ना तो ना करके आपने खयानत की है। फिर ये पूछिए कि मेरे ना करने से किसी को कितनी तकलीफ़ होगी, इस काम की क्वालिटी में कमी आई होगी। यानी बस जब हम घर बैठ जाते हैं कोई और कर लेगा, अब नया बंदा वो काम करेगा तो कैसे करेगा, तो उस दिन की पूरी नेकी गड़बड़ हो गई। अगर तकवा है तो आप देखेंगे कि अंदर से पुकार आएगी कि मैं कर सकती हूँ, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाइए। किसी के सर पे एहसान नहीं करते मैं और आप, अल्लाह की रहमत है वो आपसे मुझसे कोई नेकी ले ले। इसके बाद आयत 33 में विरासत का तذکرہ है, और आयत 34 को अगर ख़यानत के रंग में पढ़ें तो हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। यानी विरासत के साथ ख़यानत तो बड़ी ही आम फहम है, इसलिए इस पर तो कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं। कैसे भाई बहनों का माल हथिया लें, कैसे चचा भतीजों का, और बाज़ औक़ात भतीजे चचाओं का माल खा लें या तायाओं का माल खा लें, और इसी तरह हम मुख्तलिफ़ रिश्तों में एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, इससे बचना है। और आयत 34 को अगर ख़यानत के रंग में पढ़ें तो हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इस आयत में कवाम का लफ्ज़ आया है, इसके मानी मैनेजर या मुंतज़िम के हैं जो औरतों के ऊपर होते हैं, और हर मर्द अपने आप से पूछ सकता है कि मैं कवाम हूँ। और कवामियत में अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर दो चीज़ें रखी, کہ گھر والوں کے نان نفقے، کھانے پینے اور ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہو۔ بیوی کی تعلیم و تربیت بھی قوامیت کا حصہ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ مرد کو کہاں حق ہے کہ کہے کہ بیوی تعلیم نہیں لے سکتی، بلکہ مرد کا تو فرض ہے کہ اپنی بیوی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ مرد قوام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھے، مالی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی قوامیت میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مضبوط کردار، اور دوسری بات بیوی کا تحفظ۔ اگر بیوی کے ساتھ اس کے گھر والے زیادتی کر رہے یعنی سسرال، تو اس کو صحیح طریقے سے حل کرے، اسی طرح نان و نفقہ دے، کیونکہ مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور ذہنی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں اور ذہنی طور پر بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ پھر اسی آیت میں نیک بیویوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز اور روزے کی پابند ہوتی ہیں اور دوسرے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بنا دے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لفظ قانیتات، اس کا واحد کیا ہے؟ قانیتا۔ نام بھی بہت پیارا ہے اگر کسی کا آپ رکھیں تو۔ قنوت کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، عاجزی اور دوام۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو، آپ کہتے ہیں نا پاکستان، قائم، دائم، وہی لفظ ہے۔ مراد کیا کہ یعنی ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اور ہر قسم کے حالات میں شوہر کا ساتھ دے، یعنی ہمیشہ بھی کرے اور عاجز بھی رہے۔ آپ دیکھیے کہ عورت کی خوبی نزاکت ہے، عورت سخت ہو، اکڑتی ہو، اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ مرد کے مقابلے میں ایک مرد بن جائے، مقابلے پر آئے کہ میں برابر ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کا نرم ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی خوشی کا سبب ہوتی ہے۔ تو عورت کیا ہے، ہائی لائٹ کر لیں، اپنا نام آج سے لکھ لیجئے، خوشی دینے والی مشین۔ اب آپ اس کا جو پیارا سا نام، کوئی مخفف، کوئی اس کا نک نیم رکھنا چاہیں تو اپنا رکھ لیجئے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی خوشی دینے والی ہوتی ہے۔ جو عورتیں اس کے برعکس چلی جاتی ہیں، پھر وہ قانیتات نہیں رہتی۔ اسی طرح اس آیت میں عورت کی وہ تمام خوبیاں بیان کی گئی ہیں جن کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اور مرد مضبوط کردار کے ہوں اور ایسے مرد بنیں جس میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پورا احساس ہو، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اور جس گھر میں یہ بات ہوگی، وہ گھر انشاءاللہ جنت بنے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ نے ایک گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوششوں کو بیان کیا ہے کہ گھر بچ جائے، گھر نہ ٹوٹے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ دیکھیں، گڑیا گڈے کے گھر نہیں ہیں، یہ اصلی گھر ہیں۔ ایک گھر ٹوٹتا ہے نا، اس کی دراڑیں تین گھروں تک جاتی ہیں، ایک مہکا، ایک سسرال، اور ایک تیسرا اس لڑکی لڑکے کا اپنا گھر، کیونکہ پھر دلوں میں رنجش آنے لگتی ہے۔ سگے رشتوں نے آپس میں اگر رشتہ کیا تھا، وہ ٹوٹتے ہیں، بھائی بہن شکل و صورت نہیں دیکھتے، اور اگر بعد میں اس میں کوئی بچے بھی انوالو تھے تو ان کا تو مستقبل بگڑے گا ہی۔ تو لہٰذا ہر ممکن کوشش کیجئے کہ گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ پہلے سوچ سمجھ کے رشتے کیجئے، اور پھر اگر دین کا کوئی زوف نہیں ہے، صرف عادتوں کا اختلاف ہے، تو گوارا کیجئے۔ بیٹیوں کو بھی سکھائیے، بیٹوں کو بھی، کہ اپنے نصیب پہ راضی رہے، اور بیٹے خوب سے خوب تر کی تلاش میں پہلی لڑکیوں کو ریجیکٹ ہی نہ کرتے رہیں کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے یہ پسند نہیں آئی، مجھے اب کوئی اور چاہیے۔ اور اسی طرح لڑکی کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی ایک مرد تھا جو اللہ نے میرے نصیب میں رکھا، میں نے اسی کے ساتھ نبھاؤ کرنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا گیا کہ ایک بات گھر کے اندر رہتے ہوئے نہیں بن پا رہی، تو آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تب تیسرے بندے کو شامل کرو ان کی صلح صفائی کے لیے، ایک عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے۔ حکمم من اہلیہا و حکمم من اہلیہو، کیا پتہ چلا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ہوگا۔ یہ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سبق بھی سکھا دیا گیا ہے کہ جتنا زیادہ تم اس چیز کے بارے میں، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے آپ کے میرے لیے، اس میں عمل کی باتیں ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ آگے سے آگے چلتے ہیں۔